Dia baru pergi. Dia kan terbang. Wah, begitu. Hare Krishna. Bhaktan ka hardik swagat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Thank you. Canto 7, chapter 11, text, Kiyochar. So this is Kiyochar, thank you. Shkuli Vachar. Dhyan. Narayan para vipra Dharmam guhyam param vidu Kruna sadhva santa Alpidana tata pare Narayan para vipra Dharmam guhyam param vidu Kruna sadhva santa Tadvidhana tatapare.
Narayana para vipra.
Narayana para vipra.
Dharmam param vidu.
Dharmam param vidu.
Karuna sadhava santa.
Karuna sadhava santa.
Tadvidhana tatapare.
Tadvidhana tatapare.
Narayana para vipra.
शब्द नारायण परा
भगवान के प्रति
सदैव आज्ञाकारी विप्रा ब्राह्मणों में
श्रेष्ठ
धर्मम
धार्मिक
सिद्धांत गुह्यम
अत्यंत
गोपनीय
परम
परम
विदु
जानते हैं
करुणा
ऐसे व्यक्ति
अत्यंत
दयालु होते हैं
भक्त
होने से
साधव
इनका आचरण
अत्यंत
श्रेष्ठ है
शांता
शांत
तद्विधा
आपके
ही
समान
तथा
इस तरह
अपरे
अन्य
भक्ति
के अतिरिक्त
अन्य
विधियों
के पालक
अनुवादक
शांत जीवन
तथा दया
में आपसे
श्रेष्ठ
कोई नहीं है
और आपसे
बढ़कर
कोई यह
नहीं जानता
कि भक्ति
किस तरह
की जाए
या
किस प्रकार
ब्राह्मणों में
सर्वश्रेष्ठ
बना जाए।
अतएव
आप
गोय
धार्मिक जीवन
के समस्त
सिद्धांतों के
जानने वाले
हैं
और आपसे
बढ़कर
उन्हें
अन्य कोई नहीं जानता।
ये श्लोक नंबर 3 भी पढ़े
श्लोक नंबर 3 अनुवाद हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप प्रजापति ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हैं। आप अपनी तपस्या योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। महाराज जी जानते थे कि नारद मुनि मानव समाज के धर्म गुरु हैं जो आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दे सकते हैं जिससे भगवान का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः इसी प्रयोजन से नारद मुनि ने भक्ति सूत्र का संग्रह किया और नारद पंचरात्र के निर्देश दिए। धार्मिक नियमों तथा जीवन की सिद्धि के विषय में सीखने के लिए मनुष्य को नारद मुनि की शिष्य परंपरा से उपदेश ग्रहण करनी चाहिए। हमारा कृष्ण भावना विद्यालय सीधे ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति में है। नारद मुनि ने ब्रह्मा से जो उपदेश प्राप्त किया था उसे ही उन्होंने व्यास देव को दिया। व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उपदेश दिया जिन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। कृष्ण भावनामृत का आंदोलन श्रीमद् भागवत तथा श्री भगवत गीता पर आधारित है क्योंकि श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया है तथा भगवत गीता कृष्ण द्वारा कही गई है अतः उनमें कोई अंतर नहीं है। यदि हम परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगे रहने के सही मार्ग पर रहते हैं।
तो वो भी सही ना लगेगा पर कैसे
इसी
जो ओम ज्ञान त्रिलस्य ज्ञानंजना वंदेहं श्रीगुरु श्रीकाकमल श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वगणसंसदं सेवा सर्वे संस्तुतं वंच कर्प सर्वेश्वर वासुदेव कोई तपस्या का आप सपना भी दिखा सकते। वो खड़े हुए थे अपने टोस के ऊपर, हाथ था आकाश की तरफ और देवताओं के 100 वर्षों के लिए उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो भगवान चिंतन कर रहे थे कोई कम शक्ति नहीं। तो युद्ध जो जो राज उसे माता के घर में जबकि जबकि देवताओं ने ये सोचा ये जो बेटे प्रहलाद है बच्चा वगैरह है इस औरत के घर में वो कहीं नासिक नहीं बने, उनका विचार था इसे पैदा होते ही मार देना चाहिए। नारद मुनि ने कहा ये तुम नहीं कर पाओगे, इनकी इस औरत के घर में एक महान संत है, फिर उनके कहने पर उन्हें छोड़ेगा। और नारद मुनि ने जो विज्ञान दिया था प्रहलाद की माता को, प्रहलाद ने ये ज्ञान प्राप्त किया था कहाँ, तो माता के घर में। प्रहलाद के जो पिता है वो कभी समझ नहीं पाए कौन आकर मेरे बेटे को दिव्य ज्ञान दिया, वो डरते थे किसे संदर्भ का जो अध्यापक थे प्रहलाद के, वो ये कहते थे तुम लोग सावधानी से काम नहीं कर रहे, मेरे बेटे को कौन दे रहा मेरे दुश्मन का ज्ञान। तो ये ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त कर लिया था माता के घर में। प्रहलाद महर्षि ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका भी वर्णन है। तो प्रहलाद महर्षि के चरित्र से हम क्या देखते हैं कि वो थे भगवान के ईश्वर भक्त, उनके मन में केवल एक ही भाव था हर व्यक्ति को मन के सेवा में जोड़ना। जब प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे थे किसे, वो शिक्षा दे रहे थे अपने साथियों को, वो पाठशाला में पढ़ते थे यहाँ के अनेक धनी खानदान के लोगों के बच्चे पढ़ते थे और प्रहलाद उनको भी तो प्रहलाद महाराज एक रूप से आप कह सकते हो इज आर स्पिरिचुअल हीरो। जैसे जैसे भौतिक क्षेत्र में कई लोग फिर भी कलाकार को हीरो बना देते, तो आप घर जाओ देखोगे फिर भी कलाकार की तस्वीर। और कई लोग स्पोर्ट्समैन इंडिया में कोई क्रिकेट स्टार हो तो वो हीरो बन जाता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम हीरो बनाते हैं। हमारे हीरो कौन है? प्रहलाद महाराज और अनेक और भक्त जो श्रीमद् भागवतम है और भगवान के भक्तों की कथा है। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आनंद आया, युधिष्ठिर महाराज को बेचे कौन भगवान के ईश्वर भक्त। युधिष्ठिर महाराज ने वो अत्यंत आनंद अनुभव हुआ जबकि प्रहलाद महाराज की कथा को सुनने में। तो उसी प्रकार हमें भी अध्यात्मिक विषयों में रुचि लेनी चाहिए, हमें भी आनंद अनुभव करना चाहिए। तो हम इन संतों के विषय में सुनते हैं, आप श्रीमद् भागवतम में क्या पढ़ते हो, भगवानों के भक्तों की लीला है, और हमें क्या करना चाहिए, इन इन सब्जेक्ट में रुचि लेनी चाहिए। शुरू में रुचि नहीं होती जैसे कि भगवान के नामों के विषय में, भगवान के नामों के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं उपनिषद में आपके जो नाम हैं मिलाए हैं वो क्या है, अत्यंत मीठी है, चीजें जैसे मीठी और मीठी चीज़ें तो सबको अच्छा लगे। तो अपने जो नाम है चीनी जैसे मीठे, अपनी जो लीला है वो भी मीठी है, पर क्योंकि हमारी वाणी में अविद्या की बीमारी है इसलिए हम मीठापन महसूस नहीं कर पा रहे। जैसे जब हमको कहा जाता है चैज तो आप क्या वो शुरू में आरंभ में वहाँ हम जहाँ बड़ा बड़ा करने वाला है और फिर आस्ते आस्ते ठीक साफ है. सो भगवान के नाम है मीठे हैं भगवान के भक्तों की जो लीलाएँ हैं दैट इज ऑल्सो स्वीट. पर क्योंकि हमारे जीव में विद्या की बीमारी है इसलिए हम ऐसा मीठापन महसूस नहीं कर सकते. तो क्या है उपाय हमें मीठापन लाने का क्या करना चाहिए. क्योंकि हमें कहते हैं कि अगर आप नियमित रूप से जाप करोगे तो फिर आपकी विद्या की बीमारी साफ होगी ठीक हो जाएगी और आप मीठापन महसूस कर सकोगे. शुरू शुरू में हर नाम में हमारी रुचि नहीं रहती और आध्यात्मिक कथा में भी है. आप देखते हो भागवत क्लास में कई भक्त सो जाते हैं सच वाला क्यों क्योंकि उनकी रुचि नहीं है. प्रसाद खाने में कदम हो जरूर पर जब हम भगवत हम सुनते हैं गीता को सुनते हैं ये है अविद्या के कारण. तो हमें प्रयास करना चाहिए क्या कि हम इस विषय में रुचि लें और भगवत हम के प्रथम स्कंध में कहा गया है न सब प्रेश बद्रेश देते हैं भगवत देव भगवत देव स्पर्शों के अभी भाग लेते हैं कि हमें रोज क्या करना चाहिए भगवत पढ़ना चाहिए. शिव भगवत पढ़ोगे रोज तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और माया भौतिक भाव जो है घटेंगे. तो हमें स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में रुचि लेनी है. सो युधिष्ठिर महाराज ने कहा है कि हमें बहुत ही आनंद आया राज महाराज की कथा को सुनकर. आगे उन्होंने कहा कि नारद मुनि का गुणगान कर रहे हैं कहते हैं आप जो हो ब्रह्म जी के सब पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो यू आर द बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन. और क्यों नारद मुनि प्रशंसा कर रहे हैं नारद मुनि क्योंकि भगवान के महाजन भक्त हैं. तो यहाँ वो कह रहे हैं नारद मुनि जो हैं वो तपस्या बड़ी गहरी तपस्या उन्होंने की है आपने तपस्या की है इसलिए आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है. तो आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए तपस्या आवश्यक है. तपस्या के विषय में आप लगभग हर ग्रंथ पढ़ते हो और मनुष्य थे कौन थे भगवान के अवतार ऋषभ मीन्स द बेस्ट. तो उन्हें कहा गया कि वो सब सभी सर्वश्रेष्ठ हैं ना. तो ऋषभ देव जी ने उपदेश दिया किसे मैं 100 पुत्रों के उनके 100 पुत्र थे और 150 आत्मज्ञानी थे. तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं आयम देह देह भाजप में होकर ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसके द्वारा हमें क्या करना चाहिए क्या तपो देवी पुत्र का आपको इस शरीर से क्या करना चाहिए आपको तपस्या में इस्तेमाल करना चाहिए. और अगर आप आध्यात्मिक विषय तपस्या करोगे क्योंकि बदले में कुछ मिलेगा कई बार लोग पूछते हैं तुम हरिनाम करते हो तुमको मतलब कुछ मिलता बोला में हम कहते हैं बड़ी ऊँची से सही काम करते हैं. तो विष्णु भगवान कहते हैं आप तपस्या करो तपस्या होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए ये भौतिक सुख के लिए नहीं. तो तपो देवी पुत्र ये नहीं सब ये मेरे पुत्र तुम लोग तपस्या करो पर केवल विष्णु की प्रसन्नता के तो आप आगे आप पूछोगे तो हमें क्या मिलेगा इसके बदले में, हमें कोई गुंजाइश है कुछ आपका? तो विश्वदेव जी क्या कहते हैं, आपको आनंद रूप, आपको आनंद मिलेगा जो कि केवल बढ़ते जाएगा। भौतिक क्षेत्र में अगर आपको सुख प्राप्त हो रहा है, अब देखोगे शुरू में थोड़ा सुख प्राप्त होगा, फिर आस्ते आस्ते वो कम होते जाता है। नहीं, आपको भूख लगी है, पहली चपाती खाते हो ज़्यादा आनंद आता है, दूसरी चपाती खाओगे आनंद थोड़ा कम हो जाएगा, फिर तीसरी खाओगे और कम, आप क्या कहोगे बस क्यों हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में इट इज़ दी ऑपोजिट, जितना आप करोगे उतने ज़्यादा मेरे की इच्छा होगी। जैसे जैसे महाप्रभु क्या कहते हैं, चीजों दर्पण मान, आप ये हरि का नाम लोगे तो उसका पहला लाभ क्या है, हिंदी की मेहनत दूंगे फिर आनंद जो केवल पड़ते जाएगा। भगवान विष्णुदेव जी का सुबह की तपस्या करोगे भगवान की प्रशंसा के लिए, तो इसके बदले में क्या मिलेगा, आध्यात्मिक आनंद। ये आध्यात्मिक आनंद की कोई सीमा नहीं है, दैट इज़ नो लिमिट। ये नहीं कि आप, पापा जी उदाहरण देते थे, पापा जी कहते थे आप अगर लहरों के पास जाके खड़े रहो तो आप देखोगे लहरों की भी सीमा है जिसे पूरे नहीं। पर आध्यात्मिक मार्ग में जो आनंद प्राप्त होता है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ती रहे बढ़ती रहे। आपको कभी ये नहीं अनुभव करना चाहिए कि बस अभी और आनंद नहीं मिलेगा, आनंद जो है बढ़ते रहेगा। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं नारद मुनि से कि आप जो हो सब आपने भूल गए ही तपस्या उठाई, इसलिए आपको आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आध्यात्मिक जीवन में तपस्या का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षम, कि ब्रह्म जी कहते हैं तपस्या के द्वारा हम भगवान जो अधोक्ष रहे हैं उन्हें समझ पाएंगे। भगवद गीता में भगवान अलग अलग प्रकार की तपस्या का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए वो कहते हैं जीव के द्वारा क्या तपस्या होनी चाहिए, क्या उपाय का नाम, भगवान के लीलाओं का वर्णन, दूसरे शब्दों में वाणी के द्वारा हमें आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करनी है। और जब आप जो आध्यात्मिक विषय की चर्चा नहीं करते तो आप किस काय में जुड़ जाते हो, प्रजापा ने मांगा वो उसमें कहते प्रजापा करोगे तो क्या होगा, आपका आध्यात्मिक जीवन सोच रहेगा। और इसलिए गुरुभाव कहते हैं प्रजापा ने मांगा, प्रजापा से हमें बचना चाहिए। तो जीव की एक तपस्या क्या है, एक तपस्या ये है भगवान के नामों का उच्चारण करो, भगवान की कथा की कृष्ण कथा की चर्चा करें, फिर और मन के द्वारा मन की तपस्या क्या है, मन जो है आपका शत्रु बन सकते हैं और मित्र। जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया उसके लिए हर कार्य सरल रहेगा, जो व्यक्ति मन का दास बनता है तो कठिन हो जाएगा। तो इसलिए गीता में कहा गया है कि हमें इस प्रकार से जीवन को चलाना चाहिए कि अंत्य नारायण, कि अंत के अंतिम शब्द में आप विष्णु का स्मरण करते हो। मन की तपस्या क्या है, भगवान की लीला उपदेश इत्यादि का चिंतन करना। मन मन बाबा मन भक्त मन जिम मम्मा में विशेष में तो इस विषय की चर्चा अनेक श्लोकों में की गई है। और देह की तपस्या क्या है? देह की तपस्या है शरीर द्वारा गुरु ब्राह्मण की सेवा करना। श्री और श्री अपने श्री उपयोग करना किसने वही सेवा में। सो और इस विषय में शास्त्र में महाराज खटवंगा महाराज अमरीश महाराज की कथा आप सुनते हो। अमरीश महाराज ने हमें उदाहरण दिया किस प्रकार से आप अपने देह का उपयोग कर सकते हो, किस लिए? अमरीश महाराज ने नेत्रों से क्या किया? भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन। भागवत में सैन कि जो नेत्र भगवान के सुंदर विग्रह को नहीं देखते उनके लिए आँखें जो हैं जस्ट लाइक द प्लूम्स या पीकॉक पर मोर होता है, मोर पंख उसमें बीच में आँख होती है, उसे आप देख नहीं सकते, उन्हें लगता है कि देख रहे हो। सो भगवत में कहा गया है कि उस उन आँखों का कोई वैल्यू नहीं, आप आँखों से भगवान का रूप में देखो। अमरीश महाराज का उदाहरण है क्या कि इस प्रकार आप अपने अनेक इंद्रियों का उपयोग कर सकते हो। हमारे समय युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से बड़े प्रसन्न हैं, उनसे विनती कर रहे हैं क्या हमें ज्ञान और ज्ञान दीजिए। धार्मिक क्षेत्र में जितना ज्ञान आप प्राप्त करो उतना ही कम है। हमें कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमें मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गए, हमारा सदा यही प्रयास रहना चाहिए। आई नीड टू एंडेवर मोर, मैं और प्रयास करना चाहिए और कृपा प्राप्त हो। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं आप सारे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो, और आप जो हो ब्रह्मा जी के अनेक पुत्रों में कौन सबसे बेस्ट हो। तो आगे ये विष्णुराज कह रहे हैं आपकी आप में जो अध्यात्मिक गुण हैं उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं आप जानते हो कि भक्ति योग का पालन कैसे करना चाहिए। तो भक्ति योग का पालन हम कैसे करते हैं? हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्र गुरु साधु शास्त्र जो संदेश आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या गुरु के द्वारा साधु साधु को वही कहना चाहिए क्योंकि शास्त्र में हो। जो गुरु है उसे वही कहना चाहिए वो शास्त्र में। उदाहरण के लिए पापा जी ने जो शिक्षा हमें दी है 100% निर्भर थी किस पर? शास्त्र पर। और चाहे हुआ उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरे विचार से ये करना है, उन्होंने हमेशा कहा भगवान के विचार से। तो ये है शुद्ध भक्त का लक्ष्य। वो कहते हैं वो भगवान की वाणी को आगे प्रस्तुत करता है गुरु साधु शास्त्र। जैसे कई बार कभी कभी लोग वो कहते हैं इसकॉन में अच्छे साधु देंगे अच्छे गुरु, हम जो साधु हैं वो क्या करता है? प्रभा की वाणी को लेकर उसी रूप में प्रस्तुत करता है। इसलिए प्रभा जी ने गीता को क्या किस रूप से प्रकाशित किया? ये स्वरूप। कई बार लोग पूछते हैं पूरी बीम आ जाती है स्वरूप, हमें समझाना पड़ता है। सो जो असली भक्त है वो भगवान के संदेश को ऐसा रूप देता है, अगर हम उसको प्योर फॉर्म में स्वीकार करें उसका महत्व अवश्य प्रभाव पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इनमें कोई गुण नहीं है, आप में कोई गुण नहीं है। पर अगर आप गुण में गुण प्रभा जी महानाचार्यों की शिक्षा के आधार पर चल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन कामयाब हो जाएगा। ये कई बार क्या कभी कभी बाहर के लोग दोष देते ये इसको मैं कहें देन और साल फिर आए यू नहीं तो बाबा जी कहते थे यू जस्ट रिपीट लाइक अ पैरेंट व्हाट आई एम सेइंग योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल सो यहाँ युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आपका जो जीवन है शांत रहता पीसफुल लाइफ एंड मर्सी तो वैष्णव जो है इज वेरी मर्सीफुल मर्सीफुल का मतलब क्या दया वो भागवत की तीसरे स्कंद में भगवान के प्यार है ब्रह्म भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं प्रहलाद कपिल देव की माता ने पूछा था मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा मैं दिव्य मित्र के बंधन से मुक्त हो सकूँ माँ को पता था कि बेटा भगवान का अवतार है तो बेटे ने कहा आपको साधु संगत में रहना चाहिए और माँ ने पूछा है साधु के क्या लक्षण होने चाहिए साधु भी की हुई कुछ प्रचार होने चाहिए आप मान लो किसी इंजीनियर को खड़े देखोगे क्या है उसकी तालब तो इसके उत्तर में ये कपिल देव भगवान ने क्या कहा दीक्षा पर उन्हीं कहा सूर्य साधु अजित सतो संत साधु साधु ये गुण होने चाहिए तो यहाँ कहा जा रहा है इस श्लोक में कि जो नारद मुनि है अत्यंत दयालु है और आप देखते हो कि नारद मुनि हर एक का उद्धार करने को तैयार रहते हैं जैसे वो एक समय जंगल में जा रहे थे वहाँ उन्होंने देखा अनेक घायल पशु तो नारद मुनि ने कहा कौन पापी व्यक्ति है जिसके कारण ये पशु तड़प रहे हैं मरने वाले तो मैं गाय एक शिकारी था इसका खाना नहीं खाना पेशा था किले तो मैं गाय गायों के पीछे से उड़ कर आया मैं हूँ मैं गाय सब मुझे जानते हैं मैं उनके मित्र का कारण तो नारद मुनि ने कहा आप इन जानवरों को पूरा सीधा क्यों नहीं मार देते उनको उस तरफ से देखते हो उसे कहा हमें मुझे आनंद आता है उसको उस तरफ से देखकर नारद मुनि ने मुझे शिक्षा दी कि किस प्रकार इस कार्य के कारण उनको अनुभव उन्हें कई भूलना पड़ेगा मैं गाय इतना गाय ने कहा अगर मैं ये काम छोड़ दूँ तो मेरे घर का खर्चा होगा कैसे निकलेगा तो नारद मुनि ने कहा डोंट वरी विष्णु बैठे के हम बोलते ना लोगों को चिंता मत करो भगवान देखभाल करेंगे तो पूरे शहर में खबर फैल गई कि गाड़ी जो कि इतना बड़ा शिकारी था वो भज बन गया और दूर दूर से लोग आने लगे उनके दर्शन के लिए और ये रिवाज है कि किसी साधु को मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कुछ खुश साथ नहीं जाना है ये रिवाज लगभग हर धर्म है तो लोग आने लगे गाय अभी भग भर गया है तो सबके विश्वास ही नहीं कर रहा था वो आए वो सवाल आते थे क्या कुछ गिफ्ट तो नारद मुनि के पास है गाय जैसे शिकारी उसका भी उद्धार हो जाए तो नारद मुनि जो हैं वो अत्यंत दयालु हैं और दयालु ये एक भाव होना चाहिए भक्तों में तो भक्तों में दया की भावना होनी चाहिए दया की भावना का अर्थ है भक्त का यह प्रयास रहना चाहिए कि हर व्यक्ति को जोड़े किसमें तो मर्सी दया तो दो प्रकार की दया होती है एक है भौतिक दया एक है आध्यात्मिक दया भौतिक दया क्या क्या आप हॉस्पिटल बना देते हो, हॉस्पिटल बना दिया, लोगों को मुफ्त इलाज कर रहे हो, पर उसका परिणाम क्या है? आपने उस व्यक्ति को और भी फंसा दिया एक रूप में, कि वो और पाप करेगा और परिणाम करना पड़ेगा। उसे तो अच्छा है आप उसको स्पष्ट कहो कि किस प्रकार से आपके आपके जीवन जा सकते हो। तो असली दया है वो अध्यात्म ज्ञान है ना, जो भगवान जैसे तो असली दया है क्या वो कोई भी ज्ञान देना जिसके द्वारा वो जब मित्र के बदले से छुटकारा पाव कर लेंगे। कई बार लोग कहते हैं तुम अगर मंदिर खोल रहे हो, मंदिर खोलने में क्या है? मंदिर खोलते हैं क्यों, किस लिए? इसलिए कि लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, और इस ज्ञान की प्राप्ति से क्या परिणाम होता है? पाप के कार्यों से वो जुड़े हो जाते हैं। तो भक्त जो है ही इज़ वेरी मर्सीफुल। प्रॉपर ये समय ऋषिकेश में लेक्चर दे रहे और ऑडियंस में एक अमेरिकन औरत भी थी, तो पापा जी से आप सब जानते हो गए वही स्ट्रॉन्गली लेक्चर दे रहे थे। तो पापा जी ये फूल रास्कल स्वामी जी सो साल पापा ने उनसे पूछा, पापा ने कहा वी हैव ऑयल ऑन योर हैंड पर्सन साइड, यू प्रेस द बॉयल टू और बॉयल में प्रेस दॉयल बॉयल को दबाओगे तो पस निकलेंगे। तो पापा ने कहा सिमिलरली वी हैव टू प्रीज फ्रॉम खोल रहे। रियल मर्सी इज असली दया क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना, आध्यात्मिक को आगे पहुँचाना। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं आपसे आपसे उत्तम कोई भक्त है, यू आर द बेस्ट। वो कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा ज्ञान किसी का नहीं है। नारद मुनि जो है परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करा है, नारद मुनि ने ज्ञान किसे दिया था? किसे दिया था? ब्रह्मा से उनको मिला, उनसे गए व्यास से। वो व्यास से जब दुखी थे, व्यासदेव ने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की थी, जब भी मुझे लग रहा था मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई है, तो व्यास पहुँचे किधर? नारद मुनि के पास। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने शुद्ध भक्ति पर बल ले दिया, इसके पश्चात उन्होंने भगवतम ज्ञानों के पर ग्रोह कर लिया था। सारे वैदिक शास्त्रों के फलों में सबसे पक्का हुआ फल है फॉर स्पॉटलेस पुराना, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार की कमी। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं आपसे ज़्यादा ऊपर नो वन इज सुपीरियर टू यू, यू आर द बेस्ट। और आपसे हम सीख सकते हैं भक्ति योग का पालन करने के लिए। तो भक्ति योग इज अ साइंस। भक्ति योग का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए? तो माने गुरु के माने भक्तों के द्वारा, जैसे कि हमने देखा होगा इसको हमें जमाते हो कि अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है ना। वो कई बार लोग कहते हैं इसको हमें बहुत से नियम है, नियम है ये नियम हैं, इसलिए जो नियम हैं परंपरा में आचार्य के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे आप मंगल आरती बनाते हो ये सब जो नियम हैं हमारी भलाई के लिए। तो नारद मुनि जो हैं वो हमें शिक्षा दे सकते हैं कि भक्ति योग कैसे किया जाए, और भक्ति योग इज़ अ साइंस। ये नहीं कि आप मैंने रूप से आप इज ए साइंस जैसे आप नियम पर सब पढ़ते हो जैसे साइंस पे तो नारद मुनि जो है वो शिक्षा दे सकते हैं भक्तियों के भक्तियों का पालन कैसे कर सकते हैं और हमारे परंपरा में ज्ञान मिल रहा धरे और चिंदे तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार से हम एक्सिक्यूट कर सकते हैं ये ज्ञान कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा नारद मुनि के द्वारा तो भगवान के जो भक्त हैं वो ज्ञान देते हैं ज्ञान देते हैं किस पर ज्ञान शास्त्र के आधार पर नारद मुनि को भगवान भी बुलाया जाता है आपने भगवत में देखा होगा कई साल में नारद मुनि को भगवान भी बुलाते हैं क्यों क्योंकि नारद मुनि हमें 100% संदेश दे रहे हैं निर्भर है भगवान की शिक्षा के आधार पर और इसलिए नारद मुनि को भी भगवान बुलाया जाता है तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए किसे नारद मुनि से तो हमें इस प्रकार से जीवन चलाना चाहिए कि हम शरणम कृष्ण में रुचि बढ़ा सके शरणम कृष्ण हम सबसे महत्वपूर्ण है प्राण महान के पिता जब क्रोधित थे तो शरण मणिका ने कहा था घबरा मत हम आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल बढ़ देंगे वो बदल देंगे उसको इंग्लिश में कहते हैं तो जिसको संस्था की स्थापना हुई थी तो 1975 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें हमें ये दोष दिया जा रहा था कि हरे कृष्ण वाले लोगों में दिमाग को बदल देते और तो न्यूयॉर्क हाईकोर्ट में यह केस चला था तो प्रभा जी ने कहा हम ब्रेन वॉश थोड़ी कर रहे हैं वो लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हो उसका क्या लक्ष्य है उनका ये उद्देश्य रहता है कि आप उनका जो माल बनाते हैं उसको खरीदो है ना वो उनका भाव है तो प्रभा ने कहा कि एक समय एक बहरा पति था वो अपनी पत्नी को बुला रहा था कम यार तो पत्नी जवाब दे रही थी जब ये फिनिश कुकिंग आ कम मुझे कोई प्रसाद बनाने तो मैं आती हूँ वह कहने लगा तुम्हें किसी को बह रही हो सुन नहीं सो वी डोंट हम किसी दिमाग नहीं बदलते जो दुनिया बदलती है वो कहते कि ये हरे कृष्ण वॉश करें सो भक्ति योग के जो नियम हैं उसका ज्ञान हमें नारद मुनि जैसे मानिक भक्तों द्वारा प्राप्त होना चाहिए और प्रहलाद महाराज के पिता ने बेटे को गोद में बिठाकर पूछा ये बताओ कि पाठशाला में क्या वो महत्वपूर्ण संदेश है कौन सा सब्जेक्ट तो सबसे अच्छा लगा और यानी कि कुछ सोच रहे थे कि वो कहेंगे क्या हो सब उसे उन्होंने क्या है नवदा भक्ति का ज्ञान ले लिया जो जैसे ही नवदा भक्ति का ज्ञान सुना यानी कि अपने बेटे को उसे उड़ा कर नीचे फिर तो ये जो नवदा भक्ति का ज्ञान है ये हमें प्राप्त होता है क्या प्रहलाद महाराज जी के द्वारा प्रहलाद महाराज ने शिक्षा प्राप्त के लिए नारद मुनि से तो एक दूसरे कह सकते हो नारद मुनि से तो ये नवदा भक्ति का ज्ञान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये आराम होता है किसके साथ शरण कहते हैं मतलब में अनेक श्लोक हैं श्रीमता स्वागत है कृष्ण की जिसमें आप शरणम कृष्णम की महिमा के विषय में पढ़ते हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नारद मुनि की प्रशंसा की जा रही है और बाबा जी कह रहे हैं तात्पर्य में जो हमारी संस्था है डायरेक्टली कनेक्टेड टू नारद मुनि। बाबा जी पर क्या कह रहे हैं, टू लर्न अबाउट रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड द परफेक्शन ऑफ लाइफ और मस्ट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिसिप्लिन सुपरविजन ऑफ नारद मुनि। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो कि नारद मुनि द्वारा प्राप्त हो रहा है। सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज ऑथराइज मतलब श्रीमद् भागवतम इज गिविंग अस दी एब्सोल्यूट नॉलेज। तो यहाँ व्यासदेव जी उन्होंने ये ज्ञान दिया था किसे, शुक्रदेव गोस्वामी को परम्परा। शुक्रदेव गोस्वामी उपदेश दे रहे थे बड़ी सभा को, बड़े शिवराज जो विश्व के सम्राट थे उन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था। क्या था श्राप, साधन की समाप्ति में तुम्हारा अंत आ जाएगा। अगर परीक्षण में चाहते तो बड़ी सरलता से इसका विरोध कर सकते थे। आखिर परीक्षण महाराज की सुरक्षा, परीक्षण महाराज उनकी माँ के घर में थे, भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए। सो शुभदेव स्वामी ने जो परीक्षण महाराज ने सब संतों को निमंत्रण दिया वो बहुत बड़ी सभा बना। उस सभा का मूल विषय क्या था, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो जब शुक्रदेव गोस्वामी ने पूछ सुना मैं प्रसन्न हो गए। आप लोग बाहर जाते हो प्रचार करने वो कोई आपसे पूछता है अकबर भगवान के लिए यथारूप है, आप खुश हो जाते हो। कोई आपसे पूछता है आपके शास्त्र में क्या उपदेश है, आप खुश हो जाते हो। उसी प्रकार जब परीक्षण महाराज जब शुक्रदेव गोस्वामी ने सुना परीक्षण महाराज जानना चाहते हैं क्या होना चाहिए व्यक्ति का भाव जिसकी मृत्यु आने वाली है, वो बड़े प्रसन्न हुए। जैसे देवभूति तीसरे जैसे देवभूति तीसरे स्कंद में अपने बेटे से पूछती है अध्यात्म ज्ञान दीजिए और कपिल ने खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि उनकी माता की रुचि है इसमें। तो परीक्षण महाराज ने सब संतों को निमंत्रण दिया। ऐसे लगता है कि उस समय आज के ईमेल और व्हाट्सएप वगैरह से ज़्यादा तेज भविष्य करती थी कि परीक्षण महाराज ने सब संतों को निमंत्रण दिया और मिनटों में 64,000 सन पहुँच गए वहाँ। तो बड़ा एफिशिएंट सिस्टम हो रहा है और शुरू हो रहा शुरू को सभी ने क्या दिया, वही संदेश जो कि उन्हें प्राप्त हुआ था इसके द्वारा और उस सभा में हजारों संत थे जिनमें एक से सूत्र को सो गई। उन्हें मिश्रा ने हमें संतों की एक सभा चल रही थी मिश्रा ने यहाँ खास पवित्र स्थान है जहाँ की नारिकाल से अध्यात्मिक विषयों की चर्चा की जाती है। वहाँ संतों ने क्या किया, उन्होंने चुना सूता गोस्वामी को। सूता गोस्वामी ने पूरे भगवतम को एक बार सुनने से कंटेस्ट कर दिया था। जो व्यक्ति एक बार सुनने से किसी विषय को कंटेस्ट कर ले उसे क्या बताते हैं। तो सूता गोस्वामी एक बार सुनने से पूरे भगवतम को कंटेस्ट कर दिया। So we are going to see the tower. So यहाँ कहा जा रहा है प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारी जो कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी है इट इज बेस्ड 100% ऑन नारायण जी. तो आज के इस श्लोक में आप पढ़ते हो कि युधिष्ठिर महाराज वो क्या विनती कर रहे हैं मैं और भी दो इन भक्तों के लिए लाए जो प्रणाम और जो युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त हैं वो संतोष है कि इस विषय पर उन्हें आनंद आ रहा था प्रहलाद महाराज की लीलाओं के विषय में सुनने से. अगर हम आध्यात्मिक विषयों का श्रवण कितना विष्णु स्मरण करेंगे क्या परिणाम होगा अब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकोगे. इसलिए नर्मदा भक्ति में मेरे तीन क्या हैं श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरण. श्रवण कीर्तनम करोगे तो विष्णु स्मरण भी हो पाएगा. अगर आप श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं रहोगे तो आप स्मरण भी नहीं कर सकोगे. अगर कोई विद्यार्थी गए हैं मैंने कोई पढ़ाई नहीं करनी फिर ध्यान के पढ़ाई करूँगा वो काम चलेगा नहीं चलेगा. तो हमें श्रवणम कीर्तनम द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए भगवान की लीलाओं कथाओं में रुचि लेनी चाहिए. अगर हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे नियमित रूप से तो क्या परिणाम होगा फिर विष्णु स्मरण भी संभव हो पाए. चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वो मिले उजावी नदी के तट पर फिर से रामनंद रॉय राजपाल थे मद्रास के वो पहले तो ना तो महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे किससे आप देखते हो शास्त्र में भगवान के जो भक्त हैं वो प्रश्न पूछते हैं जैसे विष्णुदेव श्री को त्यागने वाले थे और वहाँ पहुँचे कौन परम भगवान सारे देवता और युधिष्ठिर पांडव का खानदान और सब और विष्णुदेव लेते हुए देखा बेल ऑफ एरोज और भगवान ने युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर तुम इनसे पूछो क्या आना चाहिए जीवन को लाकर. और भगवान ने युधिष्ठिर को कहा पूछो क्यों भगवान बताना चाहते थे भगवान के जो भक्त हैं अंत तक उनकी जो बुद्धि है ठीक रास्ते पर होती है. जैसे कि प्रभुपाद उनके अंतिम स्टे इन द प्लैनेट प्रभुपाद जब भी ट्रांसलेट कर रहे थे बड़े कमज़ोर थे पर भक्तों के सहयोग से उन्होंने 10 घंटों का अनुवाद किया. तो भगवान के जो भक्त हैं वो अंत तक उनके पास दिव्य ज्ञान रहता है. तो भगवान भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं और भक्त क्या करते हैं भगवान की महिमा बढ़ाते हैं. जैसे कि भगवान ने कहा युधिष्ठिर से पूछो विष्णुदेव से क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य. तो यहाँ में आप पढ़ रहे हो कि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं पता करो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए. तो ये है असली विषय जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तो मेरे आदमी करें मैं रुचि दें. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमने रॉय से पूछा हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए कौन उत्तर देगा किस विषय का चिंतन करना चाहिए. रामचंद्र रॉय ने कहा आपको भगवान की लीला होगा भगवान की लीलाओं की कोई सीमा है आप 1000 बार भी सुन लो दिल क्या लगता है कई बार लोग पूछते हैं तो रोज गीता पढ़ते थकते नहीं, हमारा क्या अवसर है नहीं थकते। अब यही नाम का उच्चारण करते हो दिन रात, थकते नहीं हो, हमारा उत्तर क्या है? नहीं थकते, क्योंकि ये है अध्यात्मिक। हाँ, तो रामचंद्र भाई ने कहा भगवान के नाम उनके गुण इन विषयों का स्मरण करो। संक्षेप में आप इस अध्याय में ज्ञान मुनि का गुणगान पढ़ोगे और इस अध्याय में आप ये भी देख रहे हो कि भगवान के जो भक्त हैं वो किस विषय में रुचि लेते हैं, वो रुचि देते हैं क्योंकि प्रार बना जाते भक्तों की लीला। श्रीमद् भगवतम में अनेक लीलाएँ हैं और आप प्रहलाद महाराज की लीला सुनो, अमरीश महाराज का सुनो और किसका, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, और इनके क्या परिणाम होगा। जितना आप सुनोगे उतना ही दिल करेगा कि और सुनो। तो कई बार भक्त पूछते हैं हमारी हमारी रुचि बढ़नी है भगवान की सेवा में या नहीं, तो क्या है उत्तर? अगर आपकी रुचि बढ़ रही है हरि नाम लेने में और किसी को आपका पीछा नहीं करना पड़ता तो जाप करो, जाप करो, आप खुद ही जाप कर रहे हो, आप कह सकते हो रुचि बढ़ रही है। अगर शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपको कहा जाए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर आप पढ़ते हो तो आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर हम चाहे कोई कितना कुछ भी कहे, हम सो जाते हैं क्लास के वक्त या जब के वक्त, वो अच्छा लक्षण नहीं है। हमें जो अनर्थस हैं उनका क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको तोड़ना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए। जैसे युद्ध में सिपाहियों में बड़ा क्रोध होता है, हमें माया के विषय में माया के क्रोध रखना चाहिए। वो एक ऐसे समूह है, इस समूह में है केवल अगर आप शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में रुचि लो, ये है द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। वो चाहे आप रियासा हो, गृहस्था हो या बहुत चाहे ऐसा न्यासी, जो नियम है सबके लिए सेम है, नहीं सच बता है। जो गृहस्था है उन्हें भी सोना वाला करना पड़ता है, जो ब्रह्मचारी है उन्हें भी, ये जो नियम है ये हम सब के लिए है और ये दिए गए हैं कि इसलिए कि उनके पालन से हमारा बहुत ही आकर्षण घटेगा और नष्ट हो जाएगा। देवी से गुणमय मामा दुर्गया मामे मामे माया होता माया का विरोध करना कठिन है, जो मेरी शरण लेगा वही का विरोध कर सकेगा। तो हमें भी युधिष्ठिर महाराज के समान प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों में रुचि देनी चाहिए, सच बात। और ये प्रयास करेंगे गौर विधान प्रॉपर जी कहते थे, यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स कृष्ण ही विल टेक 10 स्टेप्स टूवर्ड्स यू। अब एक कदम उठाओगे भगवान 10 कदम उठाएंगे, इतना अच्छा सौदा कहाँ मिलेगा। अब 1% हो आपको 10% रिटर्न मिलता है। तो हमें पूरे तन मन धन से भगवान के शरणागत होना चाहिए और सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम हम दूसरे पाप में मोक्ष कर, सब लोग को छोड़कर नहीं सको, ये हमारा प्रयास होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रश्न है कुछ?
हरे कृष्ण गुरुराज, आपका चरण खूब खूब प्रणाम। आपने अपने आशीर्वचन में शिरोमणि प्रधान महाराज के विषय में बताया, तो वो हीरो है निसंदेह हमारे लिए, लेकिन वो हिरण्यकश्यप के लिए खलनायक थे। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जैसा आपने गुरु महाराज अपने आशीर्वचन में बोला कि ये जो नियम है ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर कोई गृहस्थ ज़्यादा तपस्या करने लगे और नियमों को बड़े अच्छे से पालन करने लगे, तो उसके आसपास के सगे संबंधी सोचते हैं कि ये तो आपके हाथ से गया और
पागल हो गया।
तो गुरु महाराज उस संबंध में बड़ी कठिनाई हो जाती है गृहस्थ जीवन में उन नियमों को पालन करने में, तब मन में ये आता है कि डिस्काउंट मिल जाए थोड़ा सा, तो अच्छा रहा। आपने बताया कि डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन गृहस्थ के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग उसमें हो जाता है। तो आपके आपके क्या आदेश है? हरे कृष्ण।
अगर आप प्रयास कर रहे हो भगवान के शरण होने के लिए और कई दूसरा आपको विरोध कर रहे हैं, ये तो पागल हो गया है, आप उनको समझाओ हम पागल ही हो गए, ये लोग जो कर रहे हैं आपकी बुराई के लिए हमें। किसी खानदान में एक युवक एक व्यक्ति भी शुद्ध बन जाए तो पूरे खानदान का उदाहरण हो जाता है। जब बिहारे का जीपो जब हिराने का जीपो का बंद हुआ तो प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, मेरे पिता जो थे स्वभाव के थे, जब भी मेरी विनती है कि आप उनका उद्धार कर लो। और भगवान ने क्या कहा कि कहने की आवश्यकता नहीं कि किस पीढ़ी तक सबका उद्धार हो जाए। इतना बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। हम एक व्यक्ति भक्ति में स्पेशलाइज कर जाए और एक किस पीढ़ी तक सब उद्धार मिलता है, यही वो।
और प्रश्न
प्रश्न है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी भी जैसे भौतिक चीज़ होती है उसके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हूँ और अटैच हो जाती हूँ, तब कि कृष्णा से मेरे ऐसे नहीं होता, तो कृष्णा से अटैचमेंट नहीं होती, तो उसके लिए क्या कहना
है?
भौतिक वस्तुओं से अटैचमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए?
ट्राई हार्ड, ये एक फ्रेज है, ट्राई ट्राई अगेन यू सक्सीड। प्रयास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इसमें सफलता मिलेगी। पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर हम प्रयास करेंगे हमारे लिए शरण होने के लिए भगवान अवश्य की हमारा सहयोग देंगे। ये नहीं सोचना चाहिए क्या पता वो मदद करेंगे, तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गॉड विल हेल्प मी। आप एक जैसे अमेजोन बड़ी दुकान से कुछ खरीदते हो, उसके साथ बड़े बड़ी दुकान का गारंटी रहता है, नहीं चाहिए तो वापस कर देना, पैसा दे देंगे। वो कई लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर भी वापस कर देंगे, तो हमें विश्वास रहता है, हमें विश्वास रहना चाहिए कि ये कृष्णा गारंटी विल वर्क। ओके, यस।
हरे कृष्ण महाराज जी,
बोलिए बोलिए बोलिए
महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे प्रभु महाराज जी आप बोल रहे हैं कि मर्सी होनी चाहिए, तो वो तो है, और भक्ति माने से पहले भी थी थोड़ी बहुत, तो बोलती हूँ कि हमारे मंदिर में ये फंक्शन हो रहा है किसी रिलेशनशिप में या फ्रेंड सर्कल में कि आप मंदिर आओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि मैं उन्हें मंदिर में बुला सकती और वो आते नहीं है, तो मुझे क्रोध आता है, तो मैं सोचती हूँ अब मैं इनके यहाँ फंक्शन में नहीं जाऊंगी और मेरे साथ हो रहा है ये महाराज का बहुत गुस्सा हूँ उन लोगों से, मेरा बोलूँ ना तो मुझे क्या ऐसा दिखाना चाहिए मैं या फिर मैं मतलब उसको सहन करूँ क्या कैसे करूँगी
महाराज? अपने धर्म से निमंत्रण लो, अगर दूसरे व्यक्ति नहीं माने तो क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद फायदा कहा घर घर जाओ, लोगों क्या बोला बोलो कृष्ण वायु कृष्ण बोलो कृष्ण, कई बजे से वायु ले कई बजे नहीं हमें ये साल भी थोड़ी है तो जादू से अगर नित्यानंद हरिदास को कोई कह सकता है कोई किस संदेश का विरोध हमारे तो बात नहीं तो अगर कोई आपको पड़ जाए आप संदेश जो मेरे में लगे अगर कोई नहीं माने तो आप क्रोधित होने की आवश्यकता है, ऐसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा, हम ये नहीं जा रहे आप लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़े पैसे
मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ रहती हूँ तो यहाँ के बहुत अच्छे भाव आते हैं, ऐसा लगता है भगवान के लिए थोड़ा याद भी आ रही है, लेकिन यहाँ के लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब जिसमें ध्यान लगना चाहिए उसमें नहीं लगता, बाकी इधर उधर ज़्यादा ध्यान लगता है।
जब हॉस्टल में होती ये हॉस्टल में रहती हैं तो बहुत याद आती है भगवान की, बहुत मन होता है कि भगवान के पास ही रहूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर सब दूर हो जाए
कभी भूल
हरे कृष्ण। एक प्रश्न है महाराज जी, जैसे हम शास्त्र में प्रप्राय देखते हैं कि जो सुसुर भक्त होते हैं वो भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज वो भी सुसुर भक्त थे और नारद मुनि भी सुसुर भक्त थे, तो जो युधिष्ठिर महाराज को भी मतलब प्रश्न उठता था क्या, तो जो सुसुर भक्त होते हैं उनके तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो सुसुर भक्त को भी प्रश्न उठता है क्या?
नारद मुनि शुद्ध भक्त थे, प्योर डिवोटी, युधिष्ठिर महाराज प्योर डिवोटी थे, तो युधिष्ठिर महाराज के दिमाग में इतना क्वेश्चन क्यों है, क्या नारद मुनि का भी हालत शुद्ध भक्त का मतलब है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर प्रश्न कहाँ से उठता है?
जो महात्मा है वो प्रश्न पूछते हैं हमारी भलाई का है, जैसे अर्जुन है गीता में आने के प्रश्न पूछे, वो तो भगवान के सनातन साथी है, ये कहा जो स्वभाव वो ज्ञान में आ जाए, और उन्होंने प्रश्न पूछे आपके लिए हमारे लिए महाराज ने प्रश्न पूछे इसलिए हमारी भलाई के लिए आत्मज्ञानी भक्त पुलिस अभियान और हमारी भलाई के लिए प्रश्न पूछे। ओके वन मोर क्वेश्चन
भाई ऑन करो इधर बोलिए।
हरे कृष्ण महाराज, first my question is related to a theme that you often touch in your lectures, which is that of comfort zone.
So you had said that devotees should not get into some sort of comfort zone and be ready to render all kinds of services. But from a sociological point of view, we observe that as a society expands and as an organization expands, specialization of labor takes place with each devotee doing a specific and specialized service. So my question is, given that how much ISKCON has expanded, how can we apply the principles of not being in our comfort zones?
What is it? Comfort zone is invisible. A comfort zone is something. Comfort zone is something. We will serve God. That is our condition. That is why we have this experience. If we don't have this experience, we will not serve God. This is one of the things. We have said that this is not the thing. कृष्ण भगवान जिसका हमारे मशहूर था हमें जिसका भाव से जुड़ा जाए जिसका भाव क्या है चाहे आपको सुख में या दुख में आप सेवा में जुड़े रहोगे तो कम्फर्ट जोन इज लाइक अ बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे आप लोग व्यापार करते हो भगवान के साथ व्यापार करेंगे तो सबसे उत्तम भक्ति क्या है क्या है सबसे उत्तम भक्ति कृष्ण भक्त है इसका कृष्ण भक्त ओके वन क्वेश्चन देयर वी गो ये
हरे कृष्ण महाराज आपने लेक्चर्स में हमेशा ये करते कि मॉर्निंग साधना का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जब मॉर्निंग साधना में कुछ दिन कंसिस्टेंट रहते हैं पर फिर वाले कंसिस्टेंट नहीं हो पाते तो स्टूडेंट लाइफ में क्या बहुत सारे इस तरह के मॉर्निंग साधना में कैसे कर सकते हैं महाराज
आप महाराज बताते हैं कि मॉर्निंग साधना मॉर्निंग पूरा मच्छी होनी चाहिए और कुछ दिन होता है फिर उसके बाद नींद आ जाती है फिर सो ही रह जाते उठ नहीं पाते हैं ऊपर से स्टूडेंट लाइफ में या गृहस्थ लाइफ में तो और जिम्मेदारी महाराज 12 बजे सोएंगे तो सुबह 3 बजे कैसे उठेंगे तो कैसे क्या ऐसा गोली है जो खाएं जो मॉर्निंग
प्रोग्राम हाँ लोग विश्राम करो आज के लोग क्या वो सकोगे इस समय पर क्या वो ये भी उठा नहीं पड़ेगा आप दिन में 24 घंटे होते हैं 24 घंटे का शेड्यूल बनाओ तो बड़े आराम से समय निकालोगे भक्ति के लिए हमारा एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है उसको भेज देंगे वहाँ पर रिपोर्ट बना के बना ला देगा 24 घंटे में हर व्यक्ति 2-3-4 घंटे पैदा कर सकता है भक्ति के लिए चाहे आप कितने भी व्यास के रहो कहते इंग्लिश में विल दे द वे
माता जी बहुत देर से हाथ उठाए उसको दे दो बोलो जल्दी बोलो वेब सिटी के लिए जाते हैं किसी प्रचार के लिए कुछ पैसा दो मंदिर
मेरे ख्याल से वेब सिटी में कोई ही है इसके बाद खाने के पैसे वेब सिटी में कोई नहीं मिलेगा जो इसके बाद पैसे नहीं खाने के लिए उसको बोलो हम तुम्हारे पास मैनेज कर रहे हैं
समझ गए समझ में आया गुरु महाराज बोल रहे हैं कि वेब सिटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है गाजियाबाद में स्पेशली जो जिसको खाने के पैसा नहीं हो झूठ बोल रहे हैं उसको बोले कि आप इधर दीजिए हम आपको व्यवस्था करने मंदिर में
और कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आर्थिक रूप से सहयोग नहीं दे सकता मंदिर बनाने में।
अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आर्थिक रूप से सहयोग ना कर सके मंदिर बनाने में।
ओके,
इस मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर दीजिए क्योंकि बाहर घुमाइए।
लास्ट
क्वेश्चन भाई विष्णु गुरु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं अभी जैसे क्रिएटिविटी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो हमें काफ़ी चीज़ सिखाई जा रही है और इसमें कई बार हम जो गलतियाँ करते हैं वो करेक्ट करते हैं तो डांटते भी हैं। तो कई बार मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे डांट थोड़ी ज़्यादा लग जाती है कि जिसकी वजह से मैं सुबह शाम उसी चीज़ पर मेडिटेशन होता है तो उससे बाहर नहीं निकलता। बड़ा प्रयास करता हूँ कि उससे बाहर निकलूँ और अपने आप को करेक्ट करूँ लेकिन मतलब उसी में मेडिटेटर रहते हैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। इवन दो कोशिश करता हूँ अपने आप को चेंज करने की लेकिन नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में मुझे क्या
अगर वो डांट पड़ती है तो आपको लगता है डांट पड़ती है आपको खुश हो जाए या वो क्योंकि वो प्रयास करें अपनी कमियों को सुधारने के लिए और कमियों को सुधारने के लिए आपकी मित्र ही प्रयास करेंगे। विष्णु थोड़ी अगर कोई आपको ज़्यादा ठोकर ला के कर रहा है तो आप बोलो थैंक यू वेरी मच।
गुरुमा जी बोल रहे हैं यदि आपको धोखा टकी ज़्यादा कर रहा है तो आपको धन्यवाद कर बोलिए उसको थैंक यू सो मच। आप उस थैंक यू को मेडिटेट करिए। लास्ट क्वेश्चन उधर दीपांशु को बहुत देर से पिछले 45 मिनट से आप उठा रहे हैं माइक माइक पहुंचा दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज जी महाराज जी आपने कल स्टोरी जो बताया था जगन्नाथ जी का तो उसमें आपने बताया था कि बार बार राजा और प्रयास करते थे और फिर जब परेशान हो जाते थे उसके बाद आकाशवाणी होती थी तो भगवान की तो इतना भगवान पहले बता देते आकाशवाणी मतलब बाद में परेशान होने के बाद तो उसका रीजन क्या है। और
इनका कहना है कि कल क्वेश्चन है कि इंद्रदूम महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए दर्शन के लिए बार बार प्रयास करते थे और फेल होते थे तो परेशान हो जाते थे जैसे दुखी होते थे आकाशवाणी हो जाती थी तो भगवान इतना क्यों परेशान पहले एक ही बार में सारा टास्क बता देना ये कर लेना ये कर लेना परेशान करके क्यों बोल रहे हैं सुखी सुखी क्यों नहीं बोल रहे हैं। इंद्रदूम महाराज
भगवान के अपने भक्तों के साथ मेरा हो उसे आप बोले बोल दीजिए नहीं समझ सकते।
गुरुमाज बोल रहे हैं भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीला करते हैं उसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते।
थैंक यू।
आप भी परेशान होना शुरू हो गए।
थैंक यू।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।